कृष्णा वर्तुकार का
स्वागत है प्रातःकालीन श्री चैतन्य चैतन्यामृत पाठ में। और सिर्फ सोमवार को जो है ये अवसर मिलता है चैतन्य चैतन्यामृत सुनने का। और आपको जान के हैरानगी होगी, बहुत ही कम अंदर इस मार्ग में ऐसे हैं जिस इस तरीके से नियमित रूप से चैतन्य चैतन्यामृत का पाठ होता है। मायापुर में भी नहीं होता, कंजाई बाग की खासियत है कि यहाँ पर हफ्ते में एक दिन जो है चैतन्य चैतन्यामृत का पाठ सुनने का मौका मिलता है। तो आज जो प्रसंग यहाँ पर चल रहा है वो है श्री चैतन्य महाप्रभु की तीर्थ यात्रा है, महाप्रभु का जो है दक्षिण भारतीय यात्रा तीर्थ यात्रा है, साउथ इंडिया टूर। और अभी ये प्यार जो है वो तो प्यार संख्या 53 यहाँ पर बोर्ड पे है, मगर 50 पे प्यार से जो है आगे चलेंगे। और उससे पहले आज त्रिभाव दिवस है रसिकानंद स्वामी का और आविर्भाव है जगन्नाथ दास भगवान मंदिर जी का। सो हम ठीक है, पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम ज्ञानस्य निरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशिलाकया चक्षुरं मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंभूर्भुवनगदाम्यहं ददाति स्वामिदं। वन्देऽहं श्रीगुरा श्रीधरपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सार्वजातं सर्वगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सार्वधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादां संकरणकर्ता श्री विष्णु कामदांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनवंदो जगद्गुरु योगेश गोपीनाथ राधा कृष्ण नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी शुभामस्ते देवी नमामि हरे। वांछा भगवती रूपश्च विभा सिंधु भेवज पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर समाचार्य गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणे प्रचंदने निर्विशेष शून्यवादी वर्षत देशकाले। जगन्नाथ दास बाबू जी के विषय में बहुत सारी वैसे तो घटनाएं हैं, बट अभी तक मैंने कोई इस्लाम के अंदर सिस्टमैटिक किताब नहीं देखी उनके ऊपर। गौरचंद्र बाबू जी महाराज के ऊपर फिर भी बाबू जी महाराज नाम से किताब उपलब्ध है, वंशीदास बाबू जी महाराज के बारे में किताब उपलब्ध है भक्ति विकास स्वामी महाराज के द्वारा। और भी गणनान्य आचार्य शर्ग गोस्वामी पर काफ़ी उनके जीवन पर काफ़ी ग्रंथ उपलब्ध हैं, मगर फिर भी जगन्नाथ दास बाबू जी महाराज के विषय में जो है विस्तृत चर्चा है। चैतन्य चैतन्यामृत के अलग अलग प्यारों जगहों पर जो है प्रभुपाद ने कुछ घटनाएं दी हैं और मानसर महाराज की किताब में भी जो है उनका काफ़ी जिक्र आता है और इधर उधर कुछ विषय मिलते हैं। मैं दो चार विषय ही छेड़ूँगा, लंबा नहीं इस पर जाऊँगा बिकॉज रसिकानंद जी का भी त्रिभाव दिवस है। मगर ये विषय शुरू करने से पहले मैं इस बारे में ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा सभी का कि जब हम जीवनियाँ पढ़ते सुनते हैं तो जीवनियाँ होती लीलाएँ हैं, निकालने उसमें से शिक्षा होती है। तो अक्सर जो है जीवनी को एज इट इज नहीं होता है, एज इट डिलीवर्स होता है। तो इस कई बार इस चीज़ में जो है रह जाते हैं। तो जो इस तरीके का आचार्य होते हैं, कई बार ऐसे आचार्य कल पढ़ना चाहते उससे भी जिक्र हो रहा था और हम बात कर रहे थे तो कि इन आचार्य ये आचार्य जो हैं स्टैंडर्ड सेट करने के साथ साथ कई बार एग्जाम्पल्स भी सेट कर देते हैं। एग्जाम्पल्स तक नहीं जाया जा सकता, स्टैंडर्ड फॉलो हो सकते हैं। इसको कहते हैं फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स। कई बार सुना होगा ना किसी के लक्ष्य कदम पर चलना, पद चिन्हों पर चलना, तो पद चिन्हों पर चल के आप जिसके पद चिन्हों पर चले उसके बराबर नहीं पहुंचते, वैसा नहीं बनते, मगर कुछ उसी तरीके का जो है आपको आध्यात्मिक लाभ जो है मिलता है। ये कई बार चीज़ें ठीक से ना समझने की वजह से जो है बड़ी कंफ्यूजन रहती है। जैसे जगन्नाथ दास बाबा महाराज के कुछ अगर उनके जीवन से देखेंगे तो फिर मिसाल के तौर पर उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध घटना है, मैंने बहुत दिन से नहीं सुने, अक्सर जगन्नाथ दास बाबा महाराज के विषय में मैंने बहुत दिन से शायद आप जी से सुनी होगी, पर जगन्नाथ दास बाबा जी नवद्वीप में बैठे हुए थे, क्योंकि पहले तो कई साल तकरीबन 40 साल वो नाम राधा कुंड, पहले सूर्य कुंड रहे, उसके बाद राधा कुंड रहे, उसके बाद फिर वो आई गेस 80 साल की उम्र, 80-10 साल की उम्र में वो नवद्वीप गए। तो दर्श कई बार ऐसा होता है कि लोग नवद्वीप से नाम बनाते हैं, पर वो उस वक्त नवद्वीप गए। उसके एक और मतलब है, मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, तो वहाँ पर जहाँ पर वृंदावन में वो इधर रहते थे उनका एक, अभी भी उनका रात्र में उनका एक मंदिर भी है वहाँ पर, उनके डिटीज हैं, उनके डिटीज का नाम है शिवनाथ गौरांगा, बहुत बड़े बड़े शिवनाथ गौरांगा, और वो डिटीज अभी इस वक्त आपको वो पहले उधर थे, अब वो डिटीज हैं आपके इधर ये राधा रमन जी का मंदिर जो है उसके अपोजिट में, लंबे लंबे डिटीज हैं, कम से कम 5-6 फुट के लंबे डिटीज हैं, दे आर वन ऑफ दोज, बहुत कम डिटीज, ऐसे हमारे से मायापुर जाते हैं तो आपको 7 फुट के वहाँ पर मिलते हैं, बट दे आर वेरी टॉल डिटीज, बट एनी वे वो फल वो छोटे डिटीज लंबे छोटे डिटीज उनके हैं जगन्नाथ दास जी के। तो वहाँ पर जो राधापुर में वो रह रहे थे मायापुर में, और एक दिन जो है भजन के दौरान जो है डंडा लेके हट, डंडे से हट, तो उनका जो सर्वेंट था, अच्छा आवाज ठीक है, तो मेरी आवाज बड़ी बुलंद है वैसे तो डंडे से हट हट, तो उनके 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 सर्वेंट का नाम था बिहारी, वो बिहार वाले बिहारी थे, तो उनका नाम बिहारी, बिहारी का मतलब क्या, जो बिहार करते है ना, जो आनंद देते, कई बार जो लोकल लैंग्वेज में बड़ा बदनाम हुआ है नाम, बट बिहार बिहार का भी जो नाम बिहार बड़ा है, बिहार का मतलब जहाँ भगवान बिहार होते हैं, ऐसा ही एट मधुबन देव, सो इट्स अ वेरी स्पेशल प्लेस। तो वो उसको बुलाया, वो आया कि क्या हुआ, किसको, खाली था मैदान, वो डंडी मार रहे थे वहाँ हट हट कर, तो फिर पूछा कि क्या हुआ, कहते कि ये बकरी वो खा रही है, क्या नाम है तुलसी, बहुत दिन नहीं, बहुत दिन पहले बात से बहुत दिन हो गए, तो भगा रहे थे, तो कहाँ बकरी, कौन सा बकरी, बता रहे यहाँ नहीं है वो, राधा कुंड में जो है बकरी वो चल रही है, मछली भगा रहा उसको सारा खा गया तुलसी पी। तो समाओ कुदरत की बात है, उन दिनों तो तार होता था, तो वहाँ के बहुत बड़े जमींदार थे, उनको पता लगा, तो उन्होंने तार भेजा, उन दिनों राधा कुंड में कोई डाकखाना नहीं था, वृंदावन, फिर उसके बाद किसी करके फिर काफ़ी दिन में 2 महीने बाद तार वापस आए, कहता क्या, हाँ जिस दिन बोल रहे थे उस दिन यही बोल। सो अब यहाँ से बैठ के मायापुर से बैठ के वृंदावन में देखना कि भगाया, अब इसमें से पास टाइम क्या निकलता है, अभी ये तो पास टाइम हो गया, अब इसमें इसमें क्या फॉलो करें, डंडी मारे क्या करें, होता है ना आचार्य को फॉलो करो, क्या ये फॉलो करने वाला नहीं, इसमें से प्रिंसिपल फॉलो हो सकता है, सिर्फ प्रिंसिपल ये है एब्जॉर्प्शन, वैल्यू जो मूल्य है इसके अंदर वो एब्जॉर्प्शन, कि आप एब्जॉर्ब्ड हो तो आपको कहीं का कहीं भी दिख सकते हैं, दिखता है ना, घरों में बैठे जब बंदा बहुत लालची आदमी होता है पैसे का, जैसे होता है पैसा खोर, तो जहाँ आँखें बंद करता है उसको सब कुछ चाहिए, पैसा पैसा दिखता है, दिखता है उसको, दिखता है हमें नहीं दिखता, तो ये प्रिंसिपल हो सकता है, लीला फॉर्म नहीं हो सकती इसलिए, कई बार वो लीला सुन के उसके बाद बंदा उस लीला भी जो है सबके वाले जा रहे होते हैं, बट उसका वो एसेंस छूट जाता है, और फिर वो एक इम्पॉसिबल लिमिट तक पहुँच जाती है जो फिर फॉलो नहीं होती। ऐसे ही और भी हैं, ये कुछ फॉलो होने वाली लीलाएं भी हैं कि महाप्रभु का आविर्भाव था गौर पूर्णिमा जैसे अभी आ रहा है, तो उसमें बोला जगन्नाथ दास बाबू जी को कि कल है महाप्रभु का आविर्भाव है बताया ऐसे ही, तो बाबू जी बहुत खुश हो गए और कहते कि हाँ कल हम बहुत बड़ा उत्सव करेंगे, बहुत बड़ा उत्सव करेंगे। तो बिहारी ने बोला उत्सव करेंगे, कानी कौड़ी नहीं है, हम उत्सव कहाँ से करेंगे। तो कहते क्या उत्सव, तो उसके लिए कौड़ियों की क्या जरूरत है, पैसे की क्या जरूरत है, उत्सव करेंगे दबा के सुबह से लेकर सारा दिन 192 माला करेंगे, फेस्टिवल यही है फेस्टिवल। अब हम हंस रहे होंगे उसको, देखो अच्छा क्यों हंस इसलिए रहे होते क्योंकि अपने पास का नहीं है इस हंसी में निकाल दो बात को, मगर यही बस का करा जा सकता है, इसको प्रैक्टिस करते 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 ये हमारा टारगेट हो सकता है, अचीवेबल टारगेट है, अनअचीवेबल टारगेट नहीं है। आज नहीं हो सकता इसका मतलब नहीं कभी नहीं हो सकता। तो ये दैट स्पिरिट कि दैट बिकॉज दैट इज द अल्टीमेट, वो सब का एसेंस क्या है। जब भी हम बहुत बड़ा फेस्टिवल करते हैं, इस बार जैसे हमारा प्रोग्राम है लता सिंह वाटिका में ले जाएंगे पूरा प्रोग्राम, तो उसका एसेंस क्या है, उसका एसेंस है हरि नाम, उसका हरि नाम कैसे कंबाइंड हरि नाम। अगर मैं बैठ के सुबह से लेकर रात तक 192 माला करता हूँ तो उसमें 300,000 नाम निकलेंगे, पर अगर वहाँ पर 3,000 लोग आके इकट्ठे कर रहे हैं तो शायद एक घंटे में 300,000 नाम निकलेंगे। बात समझ आ रही है, दिस इज द वे जब हम संघ की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं टू प्लीज कृष्ण। ये पर्सनल साधना नहीं है पर ये भगवान की सेवा है, इंद्र हम कैसे नाम से कर सकते हैं इस काम, हर कोई कर सकता है अगर करना चाहे तो, पर शायद इमीडिएटली नहीं कर पाएगा, पर इकट्ठे आ जाएंगे तो इतना नाम कंबाइन हो गया। जैसे कई बार इस्कॉन के जब हम कार्तिक में ही होते हैं कि कितना हरि नाम जो है हमने लेके जो है भगवान को ऑफर किया, दैट इज द सेंस। उसी तरीके से और भी एक चीज़, जैसे कल रुकुन विष्णु का प्रवचन था, कल तो नहीं परसों था, तो वो जैसे जिक्र कर रहे थे एक पास्टर को 1 रुपया, तो वो 1 रुपया चांदी का रुपया था, वैसे दिनों तो स्टील का रुपया नहीं होता था, तो रुपया दिया और फिर जब उन्होंने बुलाया वापस दिया उसको, तो वो उसने बड़े भाव से दिया, ऐसी बात नहीं है जिसने पैसे दिया था उसे भीख नहीं डाली थी, मगर फिर भी वो एग्जाम्पल था कि मैं 1 रुपया नहीं भार नहीं सह पा रहा। उसका मतलब क्या है कि 1 रुपया मेरे हाथ में आती है मेरा दिमाग चलने लगा है, अभी से 1 रुपये से क्या क्या खरीदा जा सकता है, पूरी फिल्म चलने लगी है, नहीं ठीक एंड देन इमीडिएटली मेरा वो अटेंशन। सो दीज आर इसका एसेंस है। अब इसको कोई अच्छी चीज को 1 रुपया दे रहा है भगवान की सेवा में, आप पटक के वापस दे दो, पैसा आपके ओर नहीं दिया गया, आपको सिर्फ माध्यम बनाया गया भगवान को दे दो, पर वहां पर जो पास टाइम उसका गार्डिंग है कुछ और है। वही है कि इस तरीके से जो है पैसा जो है बहुत बुरी बुला है, और इसी तरीके से उनका एक लेसर नॉन पास टाइम्स है, और उसमें भी एक जो बहुत ही उसमें से सीखने वाला प्रैक्टिस करने वाली चीज़ है। उनका जब ये सरमन बिहारी जो है वो एक बार बीमार पड़ा, और बिल्कुल वो जगन्नाथ दास बाबू जी महाराज तो जिसके एक बार समाधि में चले जाते थे, दो दो तीन तीन दिन तक जब कर रहे हैं दो तीन दिन तक समाधि में रहे, तो उसके बाद उस वक्त जो है बिहारी बीमार पड़ा और बहुत तेज बुखार को इस तरीके से बिल्कुल जान लगा आ गया था। तो 3-4 दिन बाद जब उनको होश आया, उसके बाद खाते पीते भी नहीं थे, दो तीन दिन बाद खाते थे, तो ऐसे एक दिन आवाज़ मारी बिहारी का, वहाँ दिन से बिहारी तो फिर किसी ने और ने आके बताया, तकरीबन ये हफ्ता हो चुका था, तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे उसको हुआ है, वो प्रोबेबली नहीं बचेगा, डॉक्टर को बुलाया दिखाया तो नहीं बचेगा। तो कैसे नहीं बचेगा, तो वो सबको मालूम है, बिहारी उनको सर पे उठा कर चलते थे, वो चल फिर नहीं सकते थे इतनी उम्र में उनका, मगर इमरजेंटली उठ के गए और बैठे बिहारी के पास, और जानते हैं हमें किताबों में लिखा उनको आके इतनी झूल गई थी पंखुड़ियाँ, तस्वीर में भी देखी जा सकती है, उनको शालीग्राम अगर तुलसी देनी होती थी तो ऐसे पग उठानी पड़ती थी, तब दिखाई पड़ता था। और उस हालत में वो गए और उन्होंने बोला कि क्या हुआ, तो बिहारी ने कहा कि बहुत अपराध किए हैं तो आप मुझे क्षमा कर दो, मेरा जाने का टाइम आ गया। अगर बोला कि ये सेवा कौन करेगा सारा, जाने का टाइम आ गया, तो फिर अभी कोई जाने वाने का टाइम नहीं आया, तो रात को बैठे और फिर बताया डिवोटीज के थ्रू ये कि ऐसे बोलने लगे किसी को कि अभी जाने का इसका टाइम नहीं है, जाओ यहाँ से, बाद में आएंगे। एंड अगले दिन सुबह ठीक हो गए जी, कमाल हो गया, कृपा हो गई। इसमें पास्ट टाइम का प्रिंसिपल कुछ और है, पास्ट टाइम का प्रिंसिपल है कि सर्वेंट का ही सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, मालिक की सेवा करना, मालिक का भी काम है सर्वेंट को प्रोटेक्ट करना। ये प्रिंसिपल्स इन लीलाओं से लिए जा सकते, बाकी तो हम जैसे बंदे बैठ के, मुझे कम से कम अपनी बात कर सकते हो बैठ के, तो किसी को नहीं भगा या बुला नहीं सकता, मेरे बस का नहीं है तो। मगर और मुझे नहीं लगता कि बहुत से लोग शायद मेरे जैसे ही होंगे जो शायद ये काम ना कर सके, मगर इस काम की प्रैक्टिस करी जा सकती है कि जिसने कभी हमारे लिए कुछ किया हो तो उसके लिए जो है हम कुछ करें, ग्रेटिट्यूड। दीज आर पास्ट टाइम्स में से कुछ टीचिंग्स हो सकती हैं, पास्ट टाइम्स अपने आपके पास्ट टाइम्स हैं। तो ऐसे और भी हैं बट समय तो इसी तरीके से रसिकानंद प्रभु भी, तो जगन्नाथ दास बाबू महाराज की जय, तो रसिकानंद प्रभु का भी ऐसे पास्ट टाइम्स, बहुत पास्ट टाइम्स, उनकी तो पूरी किताब है रसिक मंगल नाम से, कभी आप पढ़ सकते हैं, भक्ति विकास महाराज ने बहुत अच्छा ट्रांसलेशन दिया। तो श्यामानंद पंडित के जो है शिष्य थे, ये एक से एक, जैसे गुरु वैसे शिष्य एक के बाद है। तो रसिकानंद प्रभु के लिए तो यहाँ तक कहा जाता है कि जब रसिकानंद प्रभु ने जो है तिरुभा आज के दिन, तो रसिकानंद प्रभु के जितने डिसाइपल वहाँ मौजूद थे, रसिकानंद प्रभु के साथ जब रसिकानंद प्रभु ने शरीर छोड़ा, उनके साथ निकल गए इकट्ठे। तो पास्ट टाइम सेपरेशन भी देख सकते हैं और अटैचमेंट भी देख सकते हैं, दोनों चीज। इधर उनका समाधि है वो खीचो गोपनाथ मंदिर के पास, रेमंगा रेमंगा में रेमंगा टेम्पल के पास ही जो की समाधि है। तो उनके तो खैर अपने बहुत सारे पास थे, किस तरीके से उन्होंने यहाँ तक भी, जैसे अक्सर जो है कि इस तरह के तो आचार्य जो है वो इतने पावरफुल होते हैं कि वो इंसान तो इंसान जानवर को भी दीक्षा दे सकते। एक पागल हाथी था, उसको छोड़ दिया था एक बार उनको मारने के लिए, कोई उसी तरह का एलिमेंट था, तो उसने एनवीएस था उनके लिए, ईशानु था, तो वो पागल हाथी छोड़ा, सामने आया, उसने वो कोशिश रसिकानंद प्रभु को देखते हुए उसने राम राम हरिनाम करवाया उससे रसिकानंद प्रभु ने। अब ये तो एक इम्पॉसिबल सा काम है एक आम आदमी के लिए, तो इससे और उसके बाद वो नाम करा उसको, उसके बाद उसको दीक्षा दी, क्या नाम दिया था उसको, नाम याद है छोटा सा नाम था, गोपाल दास, तुमने सब सुना गोपाल दास दिया था ना, गोपाल दास नाम दिया था। तो ऐसे तो ये अब एक इम्पॉसिबल काम, बट इससे आचार्य की स्ट्रेंथ और इससे जो प्रिंसिपल समझा जाता है वो यही है कि आचार्य इसके पास वो भगवान की स्ट्रेंथ से वो काम कर सकते हैं जो नॉर्मली, तो जैसे कि जो प्रिंसिपल हम कई बार श्लोक फेमस है कि गंगा नदी वाचानं भंगं मत गंगायति, इसी तरह के भगवान यत् कृपा तं अहं मन्ये श्री गुरु दृढ़ता है। सो ये इम्पॉसिबल फीट्स अचीव करना आचार्यों के लिए, किस तरीके से कई डाकुओं को, पूरे पूरे डकैतों का टोला जो है उनको अटैक करने आए इनको रसिकानंद प्रभु को, और उसके बाद उन्होंने उनको वहाँ से उनको वहाँ तक ले आए, उनको दीक्षा दे के, और इसलिए इस टाइप के माइंडसेट इस टाइप की जो अचीवमेंट है इसी को बाद में कभी प्रभुपाद और तरीके से कोट करते थे। जिस बार कई लोग होते थे जो कहते थे हम रसिकानंद प्रभु के फैमिली से हैं, हम श्यामानंदी परिवार से हैं, हम नित्यानंद परिवार से हैं, हम नरोत्तम परिवार से हैं, तो तब वो बोलते थे बड़ा पत्पलट के बोलते थे, कितने भाई कितने जगह में दयों को उधार किया तुमने, परिवार से हो ना, उस परिवार से इधर इस तरफ देखो इस मामला के, यहाँ हमने हजारों जगह में दही को उधार हुआ। तो ये उसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है, आज गुरु परंपरा का स्ट्रेंथ जो है हम देख सकते हैं। जय श्री श्री राधा रानी की, भगवान तो परंपरा का मतलब यही है जिसके अंदर वो स्ट्रेंथ दौड़ती है, और जो उस परंपरा को जितने मात्रा में शक्ति से, शक्ति का मतलब है हृदय से पालन करेगा उसको उतनी उतनी शक्ति प्राप्त होती है। तो इतना ही आगे हम मैं चैतन्य चिंतामृत पर चलेंगे। श्रील रसिकानंद देव स्वामी त्रिमूर्तिथि महामहोत्सव की जय। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय नित्यचंद्र जय गौर भक्तवृंद प्रयार में नहीं है पर प्रभुपाद का तात्पर्य है, इसलिए तात्पर्य इतने महत्वपूर्ण है। अब आप पहले सिद्धांत नौ सिद्धांत क्या थे, वो नौ सिद्धांत प्यार में नहीं है, नौ सिद्धांत का खंडन जो है वो भी प्यार में नहीं है, यही तात्पर्य की खूबसूरती है। तो पिछले हफ्ते वो हुआ था तो जैसे बताया खंडन के डाले श्री चैतन्य महाप्रभु ने सारे बौद्धिक चिंतकों तथा पंडितों को हरा दिया और बौद्ध आश्रय के ऊपर जब लोग हंसने लगे तो उन्हें लज्जा तथा भय दोनों का अनुभव हुआ। जाहिर ही बात है, अब जब जिस तरह की बातें वो कर रहे थे पिछले हफ्ते जो था उसमें आदमी हंसेगा नहीं तो क्या करेगा, ठीक है ना। कोई भी सेंसिबल आदमी होगा तो हंसेगा या सिर पीटेगा, तो ठीक है ना। जो बात बोल रही थी पहले वृद्धि जी सब शून्य है, पर फिर आत्मा जो है वो इटर्नल है, या तो इधर आ जाओ या शून्य है टनल है क्या है, तो ऐसे और भी चीज़ें थी, खैर नहीं जाते वहाँ। तो इस तरीके से अब यहाँ पर ये भी देखना बड़ा ज़रूरी है, यहाँ महाप्रभु ने जो है हाथ जोड़ के नहीं यहाँ हराया। अदरवाइज बहुत कम आप देखेंगे हमारे संप्रदाय में तर्क करने का जो विधान जो है हम ज़्यादा नहीं करते, वहाँ जहाँ ज़रूरी है फिर पीछे भी नहीं हटते। तो महाप्रभु ने जो है इस तरीके का जहाँ पर आता था प्रकाशानंद सरस्वती है या सार्वभौम भट्टाचार्य है या केशव कश्मीरी है ज़्यादा वो, तो उसमें भी सार्वभौम भट्टाचार्य आप देखेंगे तो विनम्रता से खत्म कर दिया थे। मगर इसमें अब बहुत जैसा आदमी इसको क्या विनम्रता दिखानी है, बेचारा इसको पता पता कुछ नहीं है, तो इससे फिर इसके बाद का मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। तो यहाँ प्रॉपर तात्पर्य दे रहे हैं इसी छोटा सा, ये सभी दार्शनिक नास्तिक थे क्योंकि वे ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते। नास्तिक मानसिक तर्क वितर्क में कितने ही दक्ष क्यों ना हो और भले ही तथाकथित महान दार्शनिक होते हैं ना कई बार, किंतु वे दृढ़ श्रद्धा तथा भगवान भगवत चेतना में स्थित वैष्णव द्वारा पराजित किए जा सकते हैं, चाहते हैं नहीं बोला जा सकते हैं, यानी कि अगर वो वैष्णव जो है इतना चौकन्ना है तब, ताकि जो है वो वैष्णव जो यहाँ हम जो बैठे हैं हम इस चीज को जो है जरा सस्ता ना ले ले, उसके लिए बड़ी तैयारी की जरूरत होती है। कई बार ऐसे लोगों से पाला पड़ता है तो जो प्रचार फील्ड में जाते हैं तो जो
बेवकूफ वाली बातें कर रहे होते हैं वो और बात है, पर कई बार समझदारी से लगने वाली बातें भी होती हैं। मगर क्योंकि उसके अंदर नास्तिकवाद होता है तो उसको पराजित किया जा सकता है, किससे? आस्तिकवाद से। श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए इस्कॉन की सेवा में लगे सारे प्रचारकों को अब ये निर्देश, सशक्त तर्क प्रस्तुत करने और सभी तरह के नास्तिकों को पराजित करने में दक्ष होना चाहिए। मैं दोबारा पढ़ता हूं, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है। श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए इस्कॉन के सेवा में लगे सारे प्रचारकों को सशक्त तर्क प्रस्तुत करने और सभी तरह के नास्तिकों को पराजित करने में दक्ष होना चाहिए। सभी तरह के नास्तिक सशक्त तर्क और इसके लिए प्रस्तुत होना चाहिए, क्या लिखा है, दक्ष होना चाहिए। तो का प्रस्तुत करना, प्रस्तुत कैसे होगा, यानी प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तुति चाहिए होती है, यानी कि बहुत मेहनत की जरूरत होती है। इस ओर मेहनत करें, ये चैतन्य चैतामृत चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों का अनुसरण करना बताया है ये चीज। तो अब जो है उसके बाद, हाँ, बावनवा बहुत लोग जान गए कि चैतन्य महर्षि चैतन्य महाप्रभु वैष्णव है। अब ये लिखने की क्या जरूरत है कि बहुत लोग जान गए, क्यों नहीं जानते थे क्या, वैसे नहीं जानते थे, नहीं जानते थे, देख के नहीं पता लगता था। चैतन्य महाप्रभु क्योंकि उन्होंने मायावाद संप्रदाय से संन्यास लिया था इसलिए उनको देख के वैष्णव नहीं पता लगता था, क्यों हाथ में दंड हो, एक दंड है, दंड नहीं होता था, शिखा नहीं होती थी, जनेयू नहीं होता था, क्योंकि मायावाद संन्यास में ये सब चीजें नहीं होती, इसीलिए जब तक वो बोलेगा नहीं तब तक पता नहीं चलेगा है कौन। कई बार पढ़ के चलते ना जान गए, लेकिन पहले नहीं जानते थे, नहीं नहीं जानते थे। एक आदमी को तभी जाना जाता है जब वो जबान बोलते, तो तब उनका पता। अतः वे दुखी मन से अपने अपने घर वापस चलेगा भी कर सकते थे दुखी मन से, ठीक है, किंतु बाद में उन लोगों ने महाप्रभु के विरुद्ध षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया, जो इंसान की फितरत होती है। शुरू में जब आदमी हार जाते तो क्या होता, जब हार जाते तो क्या होता, हाँ नहीं हार जाते थे ना षड्यंत्र रचते, वो तो हार हार जाने पर षड्यंत्र रचने मतलब ठीक से हारा नहीं वो, समझ गई, तो हारते हैं ना। मैं ऐसे भी तरह हो रहे हमारे संप्रदाय में, नाम नहीं बताऊंगा, कि हार जाने वाले ने वही मनमूत्र त्याग दिए बैठ के, वो क्या षड्यंत्र करेगा उस टाइम, वो तो शरीर ही संभाले जा रहा होता उससे, हार जाने वाला सदमे में चला जाता है, षड्यंत्र रचने की हालत नहीं होता वो। तब यहां लिखा है वो दुखी होकर अपने अपने घर चले गए, बाद में चलता दिमाग ये समझे ना, बाद में ओ मैं यूं होता नहीं है, जब हार जाते क्या होता है, हार जाने के बहुत देर बाद याद होता है, मैं यूं बोल देता, मैं ये जवाब दे देता, है ना, होता है ना, हाँ। तो लड़ाई में भूला मुक्का जो होता है ना फिर अपने मुंह को मारना चाहिए, यही है, उस पर जवाब देना था ना, तो तब वो बाद में एक कमजोर आदमी की पहचान होती है कि जी अब षड्यंत्र रचेंगे, अब कौन सी तोप चल जाएगी, अब चलो देखें क्या होता है, ठीक है, तो अब वो है क्या क्या कुछ। तो हमारे पीछे बोली अपवित्र अन्न एक थाली ते भरिया, प्रभु आगे नील महाप्रसाद भरिया, अपवित्र अन्न एक थाली ते भरिया, प्रभु आगे नील महाप्रसाद भरिया। शब्दार्थ हमारे पीछे जा रहे हैं, अपवित्र अशुद्ध अन्न भोजन एक एक थाली के थाली में भरिया भरकर प्रभु आगे श्री चैतन्य महाप्रभु के समक्ष
नीलो
लाए महाप्रसाद बोलिया, इसे महाप्रसाद कहकर। देखो किस तरह का आदमी है, प्रसाद में तमीजी नहीं है, ले आया उसको उठा। अच्छा अनुवाद सुनिए। षड्यंत्र रचने के बाद वे बहुत जन अपवित्र भोजन की थाली श्री चैतन्य महाप्रभु के समक्ष ले आए और कहा कि यह महाप्रसाद है ना, तो इस तरीके से ले झूठ। तो यही कमजोर आदमी की निशानी है, जो हार जाता है तो फिर यही रह जाता है, झूठ फरेब धोखा 420। तो अब यहां से शुरू हुआ क्यों? क्योंकि ब्राह्मण जो है उसका कर्तव्य है सत्य का सत्य प्रतिष्ठा करना। तो ब्राह्मण सत्य प्रतिष्ठा कैसे करता है? सत्य की प्रतिष्ठा करना हर किसी का कर्तव्य वैसे, पर ब्राह्मण का सत्य प्रतिष्ठा करने का मुख्य कर्तव्य है। और इसको प्रतिष्ठा करने के लिए उनका माध्यम क्या, उनका रेफरेंस जो होता है वो क्या होता है? वो होता है शास्त्र। और माध्यम क्या होता है? तर्क। ठीक है, इसीलिए इसको वाद कहते हैं। ठीक है, इसलिए हम देखते हैं अलग अलग वाद, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, वाद। और उसी तरीके से क्षत्रिय, उनका भी मकसद सत्य या धर्म की स्थापना करना होता है। वो किस चीज का सहारा लेते हैं? नहीं, शास्त्र, माध्यम युद्ध होते। ठीक है, तो इसी तरीके से है। शूद्र के लिए नहीं दिया गया, उसके लिए बहुत मुश्किल है ये काम करना। ठीक है, और वैश्य के लिए भी जो है ये थोड़ा मुश्किल है, उसकी कमजोरी आड़े आती है। जो कमजोरी नहीं है, मतलब आप समझे कि उसका स्वभाव है। तो खास तौर पर इन दोनों के लिए ये चीज लागू होती है। ठीक है, ठीक। सो अब यहाँ तात्पर्य देखिए, तात्पर्य में आप देखेंगे अपवित्र अन्न वो क्या होता है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। ऐसा भोजन है जिसे एक वैष्णव स्वीकार नहीं कर सकता। अपवित्र अन्न का मतलब ये नहीं है उसके अंदर अपवित्र, अपवित्र का मतलब यहां पर इम्प्योर है। अपवित्र का मतलब यहां पर उसको क्या कहते हैं, मिलावटी नहीं है। मिलावटी खाना इंसान नहीं खा सकता, खाते हैं वैसे तो ये, हालांकि असली खाएंगे तो मर जाएंगे, मगर यहां पर जो है अपवित्र भोजन की बात हो रही है, यानी जो एक वैष्णव ग्रहण नहीं कर सकता। ठीक है, दूसरे शब्दों में किसी अवैष्णव द्वारा महाप्रसाद के नाम पर दिया गया भोजन वैष्णव को ग्रह को ग्राह्य नहीं होता। इसका मतलब यह है कि दूसरे किसी के द्वारा महाप्रसाद नाम पर दिया, यानी महाप्रसाद बोल के भी अगर दिया है तो भी नहीं खाना होता। तो अगर महाप्रसाद बोले बगैर दिया है और बंदा खा रहा है, वैष्णव की बात हो रही है तो नहीं है, प्रैक्टिस एंड डिवोटीज नहीं, उनकी बात नहीं होती। समस्त वैष्णवों को यही सिद्धांत मानना चाहिए। ठीक है, जब चैतन्य महाप्रभु ने से पूछा गया कि वैष्णव का आचरण क्या है, तो उन्होंने उत्तर दिया वैष्णव को चाहिए कि अवैष्णव असत्संग असत की संगति से बचे। असत शब्द अवैष्णव को सूचक, असत संग जो है, अगर आप जैसे ना असत असत क्या दुनिया में साथ कुछ असत है, अगर असत संग ऐसे बोलने की असत संग त्याग कर दो, सब कुछ कर दो, त्याग कर दो, सब कुछ असत है दुनिया में, सत है क्या? ठीक है, यहां पर असत का मतलब इसलिए बता रहे हैं कि अवैष्णव का त्याग कर, संग न करना, त्याग का मतलब संग न करना। तो असत संग असत संग त्याग यही वैष्णव आचार, चैत्य चैतामृत मध्य लीला 22वां अध्याय तैयार संख्या 87। तो इस मामले में वैष्णव को कट्टर होना चाहिए। अभी यहां बोला है कबर होता ना कि तो बड़े कट्टर है, नहीं कुछ ही, कट्टर होने की गुंजाइश बहुत कम जगहों पे है, ये उनमें से एक जान में वैष्णव कट्टर होते नहीं है, कट्टर होने वाले वैष्णव होते नहीं। ठीक है ना, कट्टर होने का क्या मतलब है? कट्टर होने का मतलब उसको कुछ समझ नहीं आई है। वैष्णवता का मतलब क्या? सरलता, वो कट्टर तो नहीं होगा, इस मामले में कट्टर होना चाहिए। और अवैष्णव के साथ सहयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। किस मामले में? इस मामले में। हाँ, इसका मतलब नहीं आधा वैष्णव बहुत सारी दुनिया का वैष्णव है, आप बोलोगे मैं ऑफिस जाऊँ मैं सहयोग नहीं करूँगा, ठीक है ना। बस में मैं चढ़ गया या मैं ट्रेन में चढ़ गया और भात बाहर निकाला हुआ, वो कहता भाई हाथ अंदर के मैं सहयोग नहीं करूँगा, ये मतलब नहीं है इसका। इस मामले में सहयोग नहीं करूँगा, ठीक है। यदि कोई अवैष्णव महाप्रसाद, इसलिए दोबारा बता रहे ताकि इस बात का गलत मतलब न ले, यदि कोई अवैष्णव महाप्रसाद कहकर भोजन दे तो उसे उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। ऐसा भोजन प्रसाद नहीं हो सकता क्योंकि अवैष्णव भगवान को कुछ भी अर्पित नहीं कर सकता, ठीक है। कभी कभी कृष्ण भावना में आंदोलन के प्रचारकों को ऐसे घर में भोजन स्वीकार करना पड़ता है, ये मजबूरी की बात हो रही, जिसका स्वामी अवैष्णव है। किंतु यदि इस भोजन को अर्च विग्रह को अर्पित कर दिया जाए तो इसे खाया जा सकता है, इसका मतलब खाया जाना चाहिए वाले हिसाब में खाया जा सकता है, चलो खा लो, ये आइडियल नहीं है मगर काम चला लो, ठीक हो गई बात। ये कैसा है, जैसा कि पूरा खाना नहीं मिला हो, एक रोटी से काम चला दाल भूखा नहीं सोता, ऐसा काम चला लो, ठीक। कभी कभी अच्छा ये हो गया। वैष्णव को अवैष्णव द्वारा पकाया सामान्य भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि अवैष्णव बिना दोष की के भी भोजन पकाए, यहां तक बोल रहे अगर उसमें कोई दोष नहीं है तो वह उसे भगवान विष्णु का अर्पित नहीं कर सकता और ना उसे महाप्रसाद रूप में स्वीकार किया जा सकता है। इतना स्ट्रेस कर रहे हैं इसको आजकल, तो मैं देखता हूँ बर्बाद हो चुका है, जो थोड़ा पुराना हो जाता है भक्ति में आने के बाद। बस अभी हमारा तो मुझे बाहर का नहीं पता, कम से कम बजाई बात के बारे में तो मैं बड़े यकीन से कह सकता हूँ क्योंकि मेरे पास गोविंद दास की सेवा है, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि पंजाबी बाग में मेजॉरिटी इनिशिएटेड डिवोटीज जो हैं वो जैनी हैं। जैनी जैनों का स्टैंडर्ड क्या होता है? नो ओनियन नो गार्लिक, ये सारे भाग रहे होते हैं डिवोटीज। ये रेस्टोरेंट है नो ओनियन नो गार्लिक, वही वो जैनों का स्टैंडर्ड है। जैन बनो तो दास देवी दासी कराने का बड़ा शौक है, फैक्ट है, बुरी लग रही होगी, बहुत अच्छी बात है, बताओ करें कोई कॉन्ट्रेडिक्ट मुझे इस बारे में। स्टैंडर्ड है ना जो है नो नो ओनियन नो गार्लिक है, और फिर क्या हो गया? नो ओनियन नो गार्लिक है तो फिर प्रसाद तो नहीं, ओनियन गार्लिक भी खा लो फिर कौन सी तोप चल जानी उसके अंदर। अगर वो अनऑफर्ड है और अवैष्णव का है तो भगवान का नहीं खाते ना भगवान, अगर भगवान अभक्तों के हाथ का नहीं खाते और भगवान मीट नहीं खाते और भगवान अगर नो ओनियन गार्लिक नहीं खाते बराबर है। हम अवैष्णव के हाथ का इसलिए नहीं खाते क्योंकि भगवान नहीं खाते, इसलिए नहीं खाते, नहीं तो क्या है ओनियन गार्लिक मशरूम ये सारा कुछ खाने वाली चीजें दुनिया का थी, आप भी खाओ फिर, वो तो बात नहीं हुई है, समझे इस बात। ओनियन गार्लिक नहीं खाते क्यों भाई, उसमें भी वो भी खा लो, ये भी कर लो, उसमें क्या हो गया, जो ये कर सकते हो तो ये भी कर लो। फैक्ट्स है, बुरी लग रही होगी बात है क्योंकि बातें बुरी हैं। मैं इनिशिएटिव डिवोटीज की बात कर रहा हूं, नो इनिशिएटिव नहीं है तो उनको तो मैं नहीं ले रहा गिनती, मैं इनिशिएटिव डिवोटीज की बात कर रहा हूं। फलाना बिस्कुट चलेगा, फलाना चिप्स चलेगा, फलाना आइसक्रीम चलेगा, सॉरी क्या नाम है सॉस, ये सब चलेगा, वो देख रहे होते घुमा घुमा के इसके अंदर नो नहीं गाड़ी नहीं ठीक है, बस ये काफी है। और मैं मतलब पैक फूड की बात नहीं कर रहा, जो चलो आपके पास जो मसाले बताओ मसाले इस्तेमाल होते हैं, कई चीजें होती हैं जो आप घर पे नहीं बना सकते, एक बार बात समझी जा सके, चलो उसमें फिर भी एक बंदा समझ सकता है इस बात को, जी टमाटर के चक्कर में बैठ के नहीं बना सकते, बनाई जा सकती है और चलो नहीं घर पे रोज नहीं बना सकते, चलो समझे, मगर नो ओनियन नो गार्लिक रेस्टोरेंट होना होता है। ये पीतमपुरा में कलेवा ने नया ब्रांच हमारी बनावट खोला है, अब प्रभु हो माताओं आपके पैसे आपका पैसा है, डिवोटीज के पैसे से जो है लोनियन वो गाड़ी के सारे रेस्टोरेंट आबाद हो रहे हैं। मैं हैरान, इस पर बात करने की सबकी इसमें कोई नहीं आता बात करने की। अच्छा ये तो छोटी बात है, और चलो आगे मैं देखता हूं चीजों को। शादी है किसी की, 300 आदमी 400 आदमी रिश्तेदार है, एक बार आया खाने के लिए, रोज रोज नहीं आएगा, उसको भी देख रहे हैं कौन सा केटरर है। भाई इस तरीके का तुम रिश्तेदार हो, तुम्हारे जैसा रिश्तेदार है उसको दुश्मन की जरूरत ही कोई नहीं है, क्योंकि तो शादी में ये खिला सकता है बैठ के, जिसका ये ना उसका जात का पता, वो क्या बनाता है, किस तरह का वो आदमी है, जिसके हाथ का मैं नहीं खाऊंगा। अच्छा ये देखो कॉन्ट्रडिक्शन, देखो मैं तो डिवोटी हूं, कंठी भी मैंने डाली हुई है, गले में माला भी फेरता हूं, मैं उसकी हाथ का मैं नहीं खाऊंगा, तुम खाओ। क्यों? आज मेरी यार की शादी है। माइंडसेट देखें आप, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, प्रैक्टिकलिटी आ जाएंगे प्रैक्टिकलिटी में, पहले प्रैक्टिस तो देखें। प्रैक्टिस क्या है? भगवान को चढ़ाना है तो पड़ोस से गुंडा से उठा के दे दो, रिश्तेदार को जाना है वो बीकानेर चाहिए, कि वो बीकानेर से आए हैं, सोचे ना ये बातें जो है फैक्ट्स है, मैं कोई तो बनावटी बातें तो नहीं कर रहा, इस तरह ध्यान नहीं जाता। अब कोई थॉटफुल डिवोटी हो, जो कि पिछले बार में बात हो रही है आपकी, चलो जी आप बहुत ज्यादा बहस नहीं कर सकते, तर्क नहीं कर सकते, ठीक है हम तो नहीं कर सकते, खाना तो खिला सकते हो, वो भी नहीं खिला सकते किसी के भक्त के हाथ। जो मेरे घर आ रहा होता है तब तब तो मैं बना रहा होता हूं उसके लिए। तो ये एक पार्टी और कल्चर है। फिर वो मैंने कई बार कई भक्त से बात करी इस बार, ऐसे नहीं मैंने कई भक्त से बात करी कि तुम क्यों ऐसा करते हो, तुम ऐसा क्यों नहीं करते, भक्त क्यों क्यों तुम्हारे पास एक अच्छा मौका होता है, नहीं प्रभु जी वो क्वालिटी नहीं होती है, प्रेजेंटेशन नहीं होती है, फला नहीं होती है, अच्छा सर की चीजें होती हैं, तो तुम क्यों प्रसाद खाते हो, तो उसमें भी नहीं होती है, उसमें भी नहीं होती। फिर तो जब आपने अपनी जिंदगी अगर तो यहां पर जो है दे दी है, अगर तो दे दी है, तो भाई आप जाके उनको कन्विंस करोगे कि ये जरूरी है, कि उनसे कन्विंस हो गया कि ये जरूरी है? नहीं जी देखना पड़ता है समाज में, समाज को देखना पड़ता है। अरे थूका पच्चा तुम तो वहां छोड़ के आए थे भाई, जब तुम आए थे, मैं मिशन ट्रिब्यूट्स की बात कर रहा हूं, मैं नॉन मिशन ट्रिब्यूट्स की बात नहीं कर रहा, मैं खासतौर पर मिशन ट्रिब्यूट्स की बात कर रहा हूं, कि जब तुम आए थे तब तो पूरा समाज तुम्हारे पीछे पड़ा था, वहां मत जाना, उनके हाथ का प्रसाद नहीं खाना, वो कुछ मिला के रखते हैं, खाओगे वापस नहीं आओगे, अपने बच्चों को मत भेजना, जाएगा लड़का वापस नहीं आएगा, बेटी को मत भेजना वो शादियां नहीं करेंगी, 50 साल तब भी आपने भेजा, अब आए दीक्षा भी ली सब कुछ हो गया, अब क्या रह गया? अब फिर वही ढाक के तीन बात, वो हंसते होंगे भाई अंदर से, हाँ बड़ा आया था ठीक है। अच्छा फिर ये भी बोलते हैं जब मुसीबत होती है कोई काम नहीं आता, उस वक्त जो है डेथ में हम देखते हैं, डेथ में डिवोटी पहले पहुंचा होता है, वो बंदा आ रहा होता है, वो शक्ल दिखाता है, उसमें बाहर चला जाता है सिगरेट पीने के लिए, होता है ना ऐसा, शमशान चले चलो मेरे साथ, आप जिसका शौक दिल कर चले चलो, किसी का डेथ अगला डेथ मैं ले चलता हूँ, देखो क्या होता है उनके लिए। भाई इतने तुम जा रहे हो सदके जा रहे हो वारे जा रहे हो उनके परिक्रमा काट रहे हो, ये है पाप खाना पाप खिलाना, ठीक है जहर नहीं है मगर पाप है। एक्चुअली हमने इन चीजों का सस्ता ले लिया क्योंकि इसमें इंसान की जान भी जाती हुई दिखती है ना, उसकी शक्ल पे चेचक नहीं आ जाता, तो इसलिए लगता है ये जायज है। बाकी उसके चेतना की ऐसी जैसी फेर रहे हो कोई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे खुद बताएं ये क्या कहते हैं भगवान को भोग लगाए बिना खाने से क्या क्या होता है, बताएं मुझे, बताओ पाप होता है, और बच्चे को भी बताए डूब नहीं मरना चाहिए। बाकी मिशन डिवोटर्स को इसकी ये कैमरा घूमे तो मैं चाहूं जिस बच्चे का शक्ल दिखाए कि डूबनी बनना चाहिए और क्या होता है चेतना फिर रह गया फिर चेतना दूषित का मतलब समझते हैं क्या प्रभाव पड़ता है मैं तो पूछ रहा हूं चिड़चिड़ा बनाना गुस्सा आना और हाँ हाँ सारा कुछ काम को ये बढ़ता है भाई इसलिए मना करते हैं बाकी कोई प्रसाद से रिश्तेदारी थोड़ी अपनी ये बढ़ता है और उतनी मात्रा में बढ़ता है खाते कितना है तो भर भर के खा रहे होते चबा चबा के और माला की जब हो रही होती है माला में हमारी नींद आ रही होती है 50 स्टैलम में माला होती है माला हमारी यूं है खाना हमारा यूं है इफेक्ट्स हैं अरे मैं यही सवाल पूछते हैं ना गुरु जी 20 साल से माला कर रहे हैं 25 साल हो गए 30 साल हो गए खैर क्यों नहीं पड़ रही होती लबड़ नहीं निकलना यही खाना जो चप्पू का काम करना चाहिए था पार करवाने के लिए लंगड़ का काम कर रहा है रोक के रखा हुआ है इफेक्ट्स हैं अच्छा कोई सुनेगा वो लगा कि ये प्रभु जी को पता नहीं बड़ा तैश आ गया था तैश नहीं आएगा क्या करे फिर वो मातम करने का भी जी नहीं करता इतने पुराने भक्त होने के बाद वो लोग इस तरह की बातें वो कर रहे होते महाप्रसाद प्रसाद भगवान भी खाते कोई ढंग का बंदा वो नहीं खा रहा होता और ये बात शुरू में से समझ आ जाती है शुरू में क्यों समझ आती है अब ये बच्चे ने बताया ना पाप दिक्कत नहीं है पाप तो जब आप किसी भक्तों के संग में आओगे बहुत जल्दी निकल जाते हैं हरिनाम के प्रभाव से इसलिए बड़े बड़े आते ठाप चोर आते मगर यहां आके जल्दी ठीक हो जाते हैं उनकी प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम इसके बाद यहां पर आपको जो बदमाशियां सीखते ना फिर शुरू होता है तो पार्ट टू वो तो पार्ट वन होता है वो तो जल्दी निकल जाता है ये पार्ट टू जो है ना पोस्ट जो सीरियल जो चलता है वो है सारा सस्पेंस इसके अंदर है कैसे कन्नी काटनी है कैसे इसको प्रसाद कैसे तो खाने किस तरीके से बनाना है कन्वर्ट करना है खुद कन्वर्ट हुए ना वो ना हो खाने को कैसे कन्वर्ट करना है ये बदमाशियां सीखते हैं इस पर पीएचडी है किसको धोखा दे रहे हो भाई अपने आप को देकर देना चाहते हो देते रहो वही सारी जिंदगी देते रहो ये फैक्ट्स हैं प्रभु जी हम बाहर जाते हैं तो क्या कर रहे हैं बाहर जाते हैं घर में क्या करते हैं मैं आपको पूछ रहा हूं बाहर जाते बाहर कितना जाते हो परे का चाह रहे हो बाहर जाते हो सुबह ऑफिस जाना होता है शाम को घर आना होता है इतना ही होता है ना बाहर जाना बाहर जाते हैं या आप हम रजिस्ट्रेशन करवा रहे होते हैं जिस टाइम जी यात्रा जारी 3 दिन बिंदा बच्चा का राजी नहीं होता 3 दिन बाहर जाते हो तुम तो। ये गली दिल्ली 60 किलोमीटर की दिल्ली है बंदा 1.5 घंटे में आज बाहर कर लेता है मेट्रो की बदौलत आज बाहर क्या जाते हैं कोई फैक्ट्स नहीं ये कोई बोलने वाला नहीं है मैं तो और मैं बताऊंगा आपको कुछ फैक्ट्स और यही जन्माष्टमी थी 2016 की मैं यहां बैठा हुआ था सुबह 4 बजे से मैं देख रहा था तो वो लाइन लगी थी बाहर 5.5-7 हजार लोग पता नहीं ज्यादा ही 10,000 लोग बाहर वो लंबी सांप जैसी कतार लगी हुई है बाहर अच्छा आ रहे हैं उसमें से कई नए लोग श्रद्धालु शक्लें पता लग जाती ना कपड़े कपड़े पता लग जाती होगी बाहर से आया है नया आदमी है या श्रद्धालु है आता है वो जितने लोग आते हैं किसी के हाथ खाली नहीं हार्डली किसी के हाथ खाली किसी के हाथ में माला है किसी के हाथ में मिठाई है किसी के हाथ में कुछ है फूल है कुछ ना कुछ वो लेके आया है वो यहाँ टोकरियां भर रहे हैं थर थर यहाँ से रख रहे हैं कलेक्ट कर रहे हैं भर रहे हैं और जितने पुराने पुराने भक्त हैं मैं सेकंड इनिशिएटिव उस पर शामिल है मैं सबकी मैंने तो मेरे किसी का डर नहीं मारा मैं खुला बोल रहा हूँ उसमें भक्त भिक्षा लीडर्स भी शामिल है सेक्टर शेखर ब्रह्मा और स्पेसिफिक बताओ वो भी शामिल है मैं देखा अपने आंखों से सबके हाथ खाली मैं नाम नहीं लूंगा इतना इतने ही काफी मेरे साथ यहीं बैठा हुआ था मैं देख रहा था कि सवा 5 दर्शक बोले बैठे वो सब खाली हाथ तो कहीं ये भगवान के जन्मदिन पे खाली हाथ आते होंगे बाकी दिन क्या करते होंगे ये तरक्की हुई है कि असली ये उतरती यहां से शुरू हुई है। ये जो आप कह रहे थे ना माता जी, जो आपका नाम तो मुझे नहीं पता, जो क्षेत्र ये होता है चेतना का दूषीकरण। वो गाड़ी नहीं खरीद ले मंदिर में चढ़ा देगा अंदर, मेरी पूजा करवा दो गाड़ी की, ठीक है ना, टीन के डब्बे के लिए पूरा निकाल है उसको। वो क्यों, उसके एक्सीडेंट ना हो जाए, अपना ब्रेक फेल हो रहा है, बगाड़ी नहीं गाड़ी। ये फैक्ट्स हैं। अब इतने सालों बाद रिपीट करना पड़ता है, आगे जाओगे कैसे जाओगे मुझे बताओ। इसी से जान नहीं छूट रही है, कब रुचि है आसक्ति है, इस तरह तो आओ। ये इनसे बाहर निकलो। अच्छा और मजेदार बात, जी यहां खाने को नहीं मिलता। मैं बताऊं तुम्हारे खानदान में भी किसी को इतना खाने को नहीं मिलता जो यहां बनता है। मैं पीपीटी हो ना, मैं चला के दिखाऊं हर संडे को। ये दिल्ली में बैठे हुए जापानीज, चाइनीज तो खैर रोड पर मिल जाता है, रशियन, टर्किश, मेडिटेरेनियन, आयरिश, किधर भी गए हम, फार ईस्ट सब मिलता है। एक कोई चले जाए जो पुराने, ये हमारे पीछे शर्मा जी बैठी माता, यहां पर होगा ना लेबनीज रेस्टोरेंट होगा ना, दिल्ली में 100 रुपए से कोई सामान मिलता होगा नीचे, 100 रुपए से नीचे मिलता होगा कुछ वहां पर सामान, इनको शर्म भी नहीं आ रही होती। मैं पूरे कम्युनिटी की बात कर रहा हूं, वो बचा होता है, वो बचा होता है, वो पांच कोई दो भक्त आते हैं, वो 10 आइटम लेके चले जाते हैं और बात कोई कोई खान को। ये झूठ बोलना आपस में बैठ के झूठ बोल रहे एक दूसरे से कि जिन यहां खाने को नहीं मिलता भक्तों के, हम क्या करें बाहर, बच्चे मांगते हैं, बच्चों को तो नाम ही नहीं पता हूं जो मांग रहे होते हैं। ये बनता है यहां। और मैं चार कितना अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 5 महीने हो गए, उसके बाद अगर क्या कहते हैं भागते हैं इधर उधर तो बेशक कोई इससे ज्यादा कोई। करें कोई इसको अपने गिरेबान में झांके देख लो। सो ये आगे देखें, यहां पर प्रभुपाद का बताना फिनिश करते हैं। भगवान गीता के अनुसार 9वें अध्याय 26वां श्लोक भगवान कृष्ण कहते हैं, पात्र पुष्प फलम तो है यो में भक्त प्रयच्छति तदहम भक्त उपरितम अश्नामी प्रयतात्मना। यदि कोई भक्ति तथा प्रेम पूर्वक मुझे एक पत्ती, एक फूल, फल या जल अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। कृष्ण अपने भक्त द्वारा भक्ति पूर्वक अर्पित की गई कोई भी वस्तु स्वीकार कर सकते हैं, हम भी सकते हैं, तो कंडीशन नहीं। अवैष्णव शाकाहारी लोग तथा अत्यंत शुद्ध रसोई हो सकता, अब वो तो होता नहीं है। अवैष्णव मैं अवैष्णव छोड़ो, हमारे प्रैक्टिस डिवोटीज गंदगी का ढेर होते हैं, फैक्ट है, मैं जनरलाइज नहीं कर रहा, पर जनरलाइज नहीं किया जा सकता, पर बहुत होते हैं, सफाई की तमीज नहीं होती, तो फिर जो नहीं होती उनकी क्या कहने। जो जिसको भी शौक होता है नो ओनियन नो गार्लिक खाने का, तब उसके किचन में भी तो मुंह मार ले, वो अंदर क्या कर रहा है, यहां तो चबा चबा के खा रहे होते, वो ये बात हो रही है यहां पर। ये अगर है भी सफाई फिर भी वह भगवान विष्णु को भोजन अर्पित नहीं कर सकता, अतः उसके पकाए भोजन को महाप्रसाद रूप में ग्रहण नहीं किया जा सकता। अच्छा यही होगा कि वैष्णव ऐसे भोजन को अस्पृश्य समझकर त्याग दे। अस्पृश्य का मतलब समझते हैं, अछूत। अस्पृश्य का मतलब होता है अनऑफरेबल, अनऑफर्ड नहीं। भोग जैसे आप कोई सामान लेके आते हैं, फल सब्जी या तरकारियां आपने बनाया, उसे कहते हैं भोग, यानी कि ऑफरेबल। और एक होता है अनऑफरेबल, ये आप ऑफर नहीं कर सकते, क्यों, ऑफर एक्सेप्ट नहीं होगा, इसलिए ऑफर आपको दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, अब बात सामने वाले का एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा नहीं एक्सेप्ट, इस लिहाज से। तो इन चीजों पे दोबारा घर में बैठ के थोड़ा सोच विचार करें और भगवान बुद्धि भी देंगे और बहुत सारे रास्ते देंगे, भूखा कोई नहीं मरेगा और ना ही कोई उसकी जीभ सताएगा उसको, बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जो भगवान की तरफ जाते हैं, उन रास्तों को अपनाएं और जो चीजें आपको इस तरीके से दूर लेके जा रहे हैं उसको मार के भगाएं अंदर से। बस यहीं पे हम समाप्त करेंगे, तो प्रश्न उत्तर का समय नहीं है, 9 बजे से ज्यादा वक्त हो चुका है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा कोई अपराध मैं जरूर मैंने कुछ अपराध करे इस तरीके से बोल के मैं क्षमा याचना कर रहा हूँ, बट शायद मैं नहीं रोक पाया अपने आप को। धन्यवाद। ग्रंथ राशि में चैतन्य चित्रामृत की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, प्रसिद्ध भक्तवृंद की जय, पिता श्रीमद देवानंद है।